તારીખ 31/8/1988 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 421 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 335
को शास्त्र का स्वाध्याय और चिंतन के विषय में बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। मुमुक्षु को तत्व का चिंतन और शास्त्राध्याय दोनों को होता ही है, नहीं हो गए वो सवाल नहीं। उसमें यथार्थ सेवा कैसे हो गए इस बात से कहना है। समीर दर्शन की पूर्व भूमिका में शास्त्राध्यास तत्व चिंतन निमित्त गिनने में आए हैं। तब है कि जब यो यथार्थ हो गए तब है। तो शास्त्र स्वाध्याय निमित्त होता है ऐसा नहीं बनता। ऐसा बनता तो सबों को अनुभव और सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बनता। यथार्थ कैसे हुए इसका यहाँ स्पष्टीकरण है। विशेष अपेक्षा से उत्तर में किस प्रश्न की विशेष अपेक्षा से अपनी परिणति जिसमें टिकती हो और अपने को जिससे विशेष लाभ होता दिखाई दें वह करना चाहिए। वो सामान्य बात किया कि स्वरूप चिंतन और शास्त्र अध्ययन दो में जहाँ रस आता हो और आत्मभाव जिसमें विशेष निकट होने का दिखाई देता हो ऐसा करें, अध्ययन करें और चिंतन करें। इसमें विशेष क्या करें, ज्यादा जो में से क्या करें, तो जिसमें भी अपने को विशेष रस आता हो और भाव में विशेष निकटता होती हो स्वरूप प्रति की, वही परिणाम को करें, करना चाहिए। अब ये चीज को लेकर दोनों साथ में तो लेना सामान्य अपेक्षा से तो शास्त्राभ्यास और चिंतन साथ ही होता है। शास्त्राभ्यास चिंतन सहित होता है, चिंतन शास्त्राभ्यास सहित होता है। तो प्रश्न ये है कि विशेष समय किस में लगाना, शास्त्र में लगाना या चिंतन में लगाना, ये प्रश्न उठा है। तो इस प्रश्न के सामने ये कहते हैं कि ये कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है कि चिंतन ही विशेष करे उसको लाभ होवे और शास्त्राभ्यास कम करे उसको लाभ होवे। ऐसा भी नियम नहीं है कि शास्त्राभ्यास ज्यादा करे और चिंतन कर उसको लाभ होवे, चिंतन कम करे उसको लाभ होवे, ऐसा भी नियम नहीं है। नहीं, योग्यता अनुसार अलग अलग है। कई जीवों को शास्त्राभ्यास विशेष होता है, विशेष समय में जाता है, और बिना शास्त्राभ्यास वाला चिंतन का समय कम जाता हो और उसमें उसकी परिणति को रस आता है, उसमें उसको निकटता विशेष होती है, यही बन। कईयों को ऐसा होता है कि चिंतन विशेष होता है, शास्त्राभ्यास बहुत कम होता है और उनकी परिणति में ऐसे रस आता है और वो निकट जाता है। ऐसा बंधन नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा बंधन नहीं है, इसका स्पष्टीकरण चलता है। यदि शास्त्राभ्यास करने से अपने को निर्णय दृढ़ होता हो विशेष लाभ होता हो तो ऐसा प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। इस भूमिका के बीच की बात है कि शुरू में तो अपना मूल स्वरूप का निर्णय करना हो, निर्णय की दिशा में आगे बढ़ना है, ऐसे अन्वेषण काल वाला है कोई भी तो उनको अपना निर्णय दृढ़ हो और निर्णय की दिशा में अपने को प्रगति हो, विकास हो, लाभ हो, उसी प्रकार का शास्त्राभ्यास, उसी विषय का, उसी प्रकार का शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। शास्त्र में भी सभी बातें अपने काम की होती है ऐसा नहीं बनता, या सभी बातें सभी को काम काम में होती है, सामने आने वाली होती है ऐसा नहीं बनता। अपने प्रयोजन अपनी प्रयोजनभूत बात कौन सी है इसका ख्याल रखना पड़ता है, उस पर लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे काम में कौन सी बात आने वाली है, ऐसा लक्ष्य रहता है। वो पढ़ते 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 जहाँ अपने काम की बात आती है वहाँ वो अधिकतर ध्यान देता है प्रयोजनभूत विषय, अपना प्रयोजनभूत विषय पर वो विशेष गौर करता है, एकाग्र होता है, ज्यादा विशेष विचार करता है, चिंतन करता है, फिर वहाँ शास्त्राभ्यास के साथ साथ चिंतन चलता है। तो उसी प्रकार का चिंता है कि ये मेरे प्रयोजन का विषय है, यानी ये मुझे ही कहने में आ रहा है, यहाँ से मुझे ही स्वरूप निर्णय के विषय में कुछ लाभ हो सकता है ऐसा दिखता है। तो ऐसा प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए, यहाँ वजन है, प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। शास्त्र विस्तार बहुत है, बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से शास्त्र है, और एक समुन्द्र जैसी ये चीज है, शास्त्र समुद्र कहने में आता है, समुद्र है, तो उसमें अपने काम की चीज कौन सी है ये बात का खोज करना, इस बात को ध्यान में लेना, इस विषय पर लक्ष्य देना, अपने प्रयोजन को ग्रहण करना, ये काम अपनी जिम्मेवारी का है और स्वतंत्र अपने की कार्यशक्ति, अपनी कार्यशक्ति जो है ऐसा है, उसमें कोई सिखा देने ये बात नहीं बनती कि दूसरे के सिखाने से ये काम हो सके, ऐसी बात नहीं बन सकती। ये स्वयं को अपने आप से ग्रहण करने की चीज है, दूसरे से सिखाने से, दूसरे के सिखाने से ये नहीं आता। और यदि चिंतन से निर्णय में दृढ़ता होती हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत चिंतन विशेष करना चाहिए। अप्रयोजनभूत विषय का चिंतन करें और चिंतन चलें तो नुकसान होता है, अप्रयोजनभूत विषय का शास्त्राभ्यास होता है तो उसमें भी नुकसान होता है। यह नुकसान इस प्रकार का है कि प्रयोजनभूत विषय छूट जाता है, फिर स्वयं का लक्ष्य प्रयोजनभूत विषय पर रहना चाहिए वो नहीं रह सकता, या इस प्रकार की जो क्षमता है, योग्यता है, उसकी हानि होती है। इसलिए प्रयोजनभूत विषय पर एकाग्र हो, उस पर ध्यान रखें, उस पर लक्ष्य रखें, ये बहुत जरूरी है। चाहे चिंतन करे कोई मुमुक्षु, चाहे कोई शास्त्राभ्यास करें, जो भी करें, लेकिन प्रयोजनभूत विषय है कि नहीं है ये बात खास देखने की, मेरे प्रयोजनभूत विषय पर मैं प्रवृत्ति करता हूँ, प्रवर्तन करता हूँ, या कोई अप्रयोजन भूत विषय पर भी रस आता है तो ये नुकसान का कारण है। अप्रयोजन भूत विषय पर मुमुक्षुओं को रस आना ही नहीं चाहिए, ये बात साफ है। अगर आता है तो बहुत नुकसान का कारण है। ये कोई सीखने की चीज नहीं, अपने को किस प्रकार की क्षति है। कल ये बात थोड़ा लिया था कि किसी को लोभ की प्रकृति तीव्र होती है, किसी को दुर्गुण होते हैं उसमें, किसी को क्रोध ज्यादा होते हैं, किसी को मायाचार ज्यादा होते हैं, किसी को मान की प्रकृति तीव्र होती है। तो चारों बातों पर तो उपदेश आएगा, तो खुद को कौन सा दुर्गुण विशेष है ये तो खुद को ही पता है। तो खुद का रोग को खुद का पता नहीं है तो दवाई का पता कैसे चलाएगा। ये तो दवाई है, इलाज है। तो मेरे लिए ये काम की चीज है इस बात को पसंद करना, सिलेक्ट करना, उस बात को समझना, ये दूसरे का काम नहीं है, ये अपने आप का काम है। परमानुसार बात लिया है। चर्चा तुरंत जी ने बहुत किया, प्रकाशक का अधिकार चल रहा है इस पर गुरुदेव के प्रवचन में। ढोकड़ामां 5 लाख ने खूब जती हो तो जुए नहीं। रूई का बड़ा व्यापार करने वाले हो, कोई व्यापारी उसे 5 लाख का नुकसान जाता हो उस पर तो ध्यान देवे नहीं। और जिसमें वो जिस कंतान में वो रूई चौड़ जाती है तो उसको खुद ही निकालने को बैठ जाए, कलेक्शन करने को सारा संतान में से निकाले तो 100 ग्राम भी रुई निकलने वाली नहीं है चौटी हुई। तो अपनी शक्ति और समय उसमें लगा दे। ऐसे अप्रयोजन भूत बात जानने में रुक जावे, खुद को उसका कोई काम काम में आने वाली चीज नहीं हो, ऐसे शास्त्र के विषय पर चर्चा करें, उसी को ही पढ़ता रहे, उसी का ही विचार करता रहे। और प्रयोजन भूत तत्व देव गुरु शास्त्र इनके स्वरूप को जाने नहीं तो मिथ्यात्म नहीं करे। यहाँ पर हीन अधिक जानने की कोई मुख्यता नहीं, तुम ज्यादा जानते हो तुम कम जानते हो इसकी कोई मुख्यता नहीं, तुम्हारा सूक्ष्म तगड़ा है तुम्हारा सूक्ष्म कुछ कम है मंद है इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई मुख्यता नहीं। किंतु प्रयोजन भूत तत्व को पहचान करके उसकी यथार्थ प्रतीति करने से ही मिथ्यात्व टल कर सम्यक प्रति उत्पत्ति होती है। तो ये बात क्या है 926 में आगे कहते हैं, मेरा द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। वहां देव गुरु शास्त्र और नर तत्व का बात लिया। अब कहते हैं कि मेरा द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, उसमें द्रव के अवलंबन से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक तो पर्याय प्रकट होती है। इस विषय की प्रयोजन भूत बातों को मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पकड़ता। जिसका दर्शन मोह तीव्र है उसके सामने ऐसा विषय आता है फिर भी वो इस विषय पर ध्यान नहीं देता। उस पर उसका जो लक्ष्य जाना चाहिए, भजन जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। मिथ्या दृष्टि को भी प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ दोनों को जानने का उघाड़ है, सूक्ष्म है, वो जान नहीं सकता है, वो बात नहीं है। सूक्ष्म में क्षमता है, योग्यता है कि वो चाहे तो बराबर समझ सकता है, प्रयोजन भूत को भी समझ सकता है और प्रयोजन भूत को भी वो समझ सकता है, परंतु प्रयोजन भूत तत्व को जानने में उसका लक्ष्य नहीं जाता। विचार तो तीव्र होने से प्रयोजन भूत पर उसका लक्ष्य केंद्रित नहीं होता। यह दर्शनों के कारण से है। इसका क्या कारण है? कि दर्शन वो तीव्र होने से है, उसको प्रयोजन भूत पर लक्ष्य नहीं जाता। जिसका दर्शन वो मंद हुआ है और उक्षम होने की श्रेणी में जो आया जी, दर्शन वो उक्षम होगा इस श्रेणी में जो आया है, उसी को प्रयोजन भूत विषय पर बहुत ध्यान जाएगा, उसका लक्ष्य वहां केंद्रित होगा। उघाड़ तो उघाड़ ही है, मैंने सूक्ष्म तो सूक्ष्म ही है, परंतु उल्टी श्रद्धा यानी तीव्र दर्शनों के कारण से उसका ज्ञान भी ऐसा ही काम करता है, मिथ्या स्वरूप में मिथ्या ज्ञान में ऐसी प्रवृत्ति करता है कि प्रयोजन बुद्ध विषय को छोड़ देता है और प्रयोजन बुद्ध विषय को पकड़ लेता है, मुख्य करता है, वहाँ ज्यादा रस लेता है, वहाँ पढ़ता है ज्यादा, उसको उसका विचार ज्यादा करता है। उसी के सामने 935 में प्रतिपक्ष का ज्ञानी का बोल दिया है। ज्ञानी को भी प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्व दोनों को जानने का उघाड़ है। ज्ञानी दोनों को जान सकता है, फिर भी मिथ्यात्व के अभाव में, मिथ्यात्व के अभाव होने से प्रयोजन भूत पर जानने पर इसका लक्ष्य जाता है। उसका लक्ष्य तो वहाँ ही जाता है कि ये जीव को प्रयोजन भूत हैं, ये मुझे प्रयोजन भूत हैं, और वो सुखी होता है। यह थोड़ा बात बदला है कि यही कारण से वो सुखी होता है, उसको समयत्व प्रकट होता है, वो तो हो ही गया है, इसलिए वो सुखी होता है ज्यादा, ऐसा ले लिया है। अज्ञानी कदाचित व्यवहार धारणा से धारणा में ले ले, परंतु अंतर्मुख दृष्टि नहीं करता, इसलिए अप्रयोजन भूत होने होता है उसको ही वो जानता है, प्रयोजन भूत को वो जानता नहीं है। धारणा करता है फिर भी नहीं जानता है, ऐसा कहने में आता है कि प्रयोजन भूत के विषय में दो तीन बोल आए हैं इधर। हाँ, फिर भी उसमें भी अपने को कहाँ ज्यादा प्रयोजन है, इसको देखना कहाँ आ सकता है, कहाँ भूल होती है, कहाँ समझ में नहीं आता है, और ऐसे स्वरूप का निर्णय करने में कौन सी बात मेरे काम की है, इस बात को खोज लेना इस स्वयं का काम है, इसमें कोई दूसरे की मदद काम में नहीं आती। मैंने अपने को क्या चाहिए ये अपने को ही निर्णय करना पड़ता है, इसका निश्चय दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं यहाँ कि यदि चिंतन से, तत्व चिंतन से निर्णय में दृढ़ता होती हो, विशेष करना चाहिए, माँ भी शब्द लगाया, चिंतन विशेष करना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन प्रयोजन भूत विषय, प्रयोजन भूत चिंतन, जहाँ निर्णय के प्रति आगे बढ़ने का होवे, ऐसा प्रयोजन भूत चिंतन विशेष करना चाहिए। क्योंकि पहले जो मुमुक्षों को काम करना है वो पहचान करने का है, या निर्णय करने का है, या भाव भाषण होने का है, यही पहला काम है। सबसे पहला जो काम है यही काम है, उसी दिशा में ही इस दिशा को, इस कार्य को निश्चित करके उसी दिशा में अपनी शक्ति लगावे, और कोई गलत जगह अपनी शक्ति को नहीं लगावे, ये बात में खुद को सावधान रहना है, उसमें जागृति नहीं रही तो नुकसान का धंधा हो जाएगा, अप्रयोजन भूत विषय पर चले जाएगा, प्रयोजन भूत विषय अपनी परिणति को लाभ हो वह करना चाहिए। तो अपनी परिणति को लाभ होता है या लाभ नहीं होता है वो कौन देख सकता है? ये कोई दूसरा देख तो नहीं सकता, ना बता सकता है, ना कह सकता है कि तुमको इसमें लाभ है, तुमको इसमें लाभ है। हाँ, ऐसा बनता है कि यदि ज्ञानी के संग में कोई जीव विशेष नजदीक है तो उनको बता सकता है कि तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको करो, ये तुम्हारा काम की चीज नहीं है, ये तुम्हारा काम की चीज है, ऐसा बता सकता है घनिष्ठ परिचय होए तो। लेकिन ऐसा तो बहुत कम मौका मिलता है, और घनिष्ठ परिचय वाले को तो थोड़ा बहुत अपनी योग्यता भी ऐसी होती है कि वो अपना प्रयोजन को विशेष रूप से समझ सकता है कि मेरा प्रयोजन कहाँ है और कहाँ मेरे प्रयोजन की बात नहीं है। उसकी योग्यता तो वैसे ही इतनी तैयार हो ही जाती है। उसमें भी कहाँ विवेक है, जो इच्छित विषय है उसमें तीव्र कषाय से प्रवेश करता है फिर भी उसको कहाँ दुख लगता है, उसका सुख दुख का कहाँ ठिकाना है। क्रोधादि भाव है उसमें तीव्र क्रोध हो गए तो दुख ज्यादा होता है, क्रोध मंद हो गए तो इतना दुख कम होता है, ये बात जरूर है। लेकिन कषाय की तीव्रता में हर हमेशा उसको दुख होता है ऐसी बात नहीं है। और ये तो विषय ही ऐसा है कि हमें कषाय का अभाव करना है, तीव्र मंद का हमें कोई, ये तो अनंत बार तीव्र हुआ अनंत बार मंद हुआ कषाय, लेकिन हमारा ध्यान ये कषाय के प्रति नहीं देना है, हैं हमें ध्यान देना है दर्शन मोह के प्रति। ये कषाय चारित्र मोह की प्रकृति है मुख्यतया, लेकिन हमें ध्यान देना है दर्शन मोह के प्रति कि हमारा दर्शन मोह गल जाए और हमारा दर्शन मोह गल जाने से वो उपशम हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आने से उपशम सम्यक दर्शन प्रथम होगा, प्रथम तो सभी को उपशम सम्यक दर्शन ही होता है, तो उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यही तो अपनी चर्चा से ये प्रयोजन सिद्धि का जन्म हुआ है कि दर्शन मोह कहाँ कहाँ मुमुक्षुओं को लग जाता है, कहाँ कहाँ वो दर्शन मोह के साथ खुद ही लग जाता है, और दर्शन मोह को कहाँ वो तीव्र कर लेता है, कहाँ दर्शन मोह मंद होना, ये बात को अच्छी तरह समझें और उसी पर ध्यान दें, यही प्रयोजन है। कषाय की मंदता हो ये कोई हमारा प्रयोजन नहीं, कि कषाय की मंदता होती है तो ठीक लगता है, उसमें कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कषाय की तीव्रता में भी कभी ठीक मानेगा, मंदता में कभी ठीक मानेगा। तो जो कार्य की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, किस तरह की यथार्थ पद्धति है, कहाँ से हम शुरू करें, किस लाइन में जावे, ये बात पहले देखनी है। सारे विश्व में धर्म के क्षेत्र में कषाय मंद करना, इसके युक्ति प्रयुक्ति तरीका और इसके लिए सभी प्रकार के व्रत संयम रूढ़ि रिवाज ये निश्चित करके वहीं चलते हैं लोग, कषाय को मंद करने को जाते हैं, कषाय तीव्र नहीं हो गए और कैसे कषाय मंद हो गए, यही प्रवृत्ति के पीछे लगे हैं सब। धर्म के करीब करीब सभी संप्रदाय में यही हालत है। हमारा तो रास्ता ही अलग है, हम तो ये कहते हैं कि हमारा तो रास्ता ही अलग है, हमारा तो यही रास्ता है कि दर्शन मोह को हम समझें, भाव से इसका भाव भाषण करें और वो गल जाए और उसको उपशम हो जाए और हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, यहाँ से हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, मोक्ष मार्ग की भूमिका में आवे, इसमें फिर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें और मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े। ये कषाय का अभाव करने की श्रेणी है, मंद करने की श्रेणी नहीं है। और दर्शन वो जहाँ मंद होता है वहाँ चारित्र मंद, चारित्र मो तो अवश्य अवश्य ही मंद होता है। जैसे प्राथमिक भूमिका के चर्चा करें कि किसी जीव को स्वरूप जिज्ञासा हुई कि मेरा मूल स्वरूप कैसा है, ऐसा कुछ बिल्कुल नया नया जीव है, इस क्षेत्र में ही नया आया, उसको ये पता चला कि मेरा मूल स्वरूप अगर मैं नहीं जानूंगा तो मेरा कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में मुझे विवेक कैसे हो सकता है, ये विवेक ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा मूल स्वरूप असल में कैसा है इसकी अगर तीव्र जिज्ञासा में कोई आता है तो उसका दर्शन वो मंद होता है। उस तीव्र जिज्ञासा के वशात उसको कहीं रस नहीं आता है, खाने में पीने में और जगह में कहीं रस नहीं आता है, तो सहज ही उसका चारित्र मोह तो वैसे ही मंद हो गया। कषाय मंद करने की कोई दूसरा प्रयत्न नहीं करना पड़ा कि मैं कषाय को मंद करूं, ऐसा ध्यान नहीं देना पड़ा, ऐसा लक्ष्य में नहीं लेना पड़ा कि मैं कषाय को मंद करूं, कषाय तो सहज मंद हो जाता है। लेकिन किस लाइन से आगे बढ़ना है ये बात तो पहले समझ लेना है और उसी लाइन में आगे बढ़ना है। अविधि से कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती, यथार्थ विधि से कार्य करने से कार्य सिद्धि होती है, अविधि से कार्य करने से कार्य सिद्धि कभी नहीं होती। तो ये एक सुविधा है इस मार्ग के अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत साधकों ने इस मार्ग पर चल करके मार्ग दिखला दिया है कि तुम इस विधि से चलो, कौन सी विधि यथार्थ है वो भी प्रसिद्ध कर दी है। ऐसा नहीं है कि वो हमको पता ही नहीं है कि कौन सी विधि ठीक होगी कौन सी विधि ठीक नहीं होगी, क्या करें हम तो जानते नहीं है, इसलिए कभी इस तरह से प्रयोग कर लेते हैं, कभी इस तरह से प्रयोग कर लेते हैं, कभी इस तरह से प्रयोग कर लेते हैं, तो ऐसे प्रयोग करते करते पता चल जाएगा कि कौन सी विधि सही है, ये भी नहीं है। वो जो यथार्थ विधि से सफलता को प्राप्त हुए उन्होंने इस मार्ग को दर्शा दिया, दिखला दिया कि यही कार्य की पद्धति है, यही विधि है, अगर जिसको अपना हित करना हो यही क्रम से आगे बढ़े, दूसरा कल्पना से नया मार्ग खोजने की कोई प्रयास नहीं करे, इससे कोई कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है। एक है तीन काल में परमार्थ का पंथ, यही बात है। तो ऐसे कषाय की तीव्रता में दुख होवे और मंदता में अच्छा लगे और हमें संतोष हुए कि अच्छा ये कषाय मंद तो हुआ, तो इसमें दर्शन मोह तीव्र हो जाएगा। चारित्र मोह के मंद होने से संतुष्टपना आया, दर्शन मोह तीव्र हो जाएगा। ज्ञान के सूक्ष्म के शास्त्र ज्ञान बढ़ने से संतुष्ट हुआ, दर्शन मोह तीव्र हो जाएगा। या किसी भी पर्याय पर भजन ज्यादा दे दिया, दर्शन मोह तीव्र हो जाएगा। ये आए ना पत्र में, द्रव्य दृष्टि प्रकाश पत्र में ये बात आए कि मोक्ष मार्गी जीव अपने अल्पकालीन पर्यायों का मूल्य नहीं आंकते, पत्र में आए। इसका क्या मतलब है कि उनका भजन ही नहीं जाता है, हालांकि उनकी स्वयं की पर्याय तो विकसित हो रही है, गुण प्रकट हुए हैं और प्रयोग करवा जो विशेष है, मैंने ये मारा देखा था, विशिष्टता है।
अभी पहला थी था।
हाँ पहला थी था, पहला सिद्ध था, पछी तो ये चारित्र में बीजा ने देखा एम थाय, पहलो जे थाय छे
એ અભિપ્રાય પૂર્વક ને માન્યતા પૂર્વક નો છે. એમાં માન્યતા છૂટે છે, પોતાપણા નો અભિપ્રાય છૂટી જાય છે. પછી તો જગત જોવે એમ બીજાને પણ ખબર પડે છે કે આને મારા પણ દેખાતો
બરોબર.
આ અત્યારે કાગળ લખીને રૂપિયા મોકલા ગઈ તો પ્રશ્ન જ નથી, કરે છે કે નહીં? બીજાને કાગળ લખાવે કે ભાઈ અહીંયા કાંઈ તકલીફ નથી, હવે અમે અહીંયા પહોંચ્યા છીએ. વિહાર કરતા કરતા અહીંયા આવ્યા છીએ, પણ અમે ફેરીને શું કામ છે? તમે ક્યાં છો? આપણા કુટુંબ ના સભ્ય છે, આપણા મહારાજ છે. આપણા ક્યાં મહારાજ રહ્યા? મહારાજ મહારાજ ના છે. મહારાજ ના નજરે જોવો કે કુટુંબ ના સભ્ય ની નજરે જોવો? મહારાજ પણ એમ જોવો કે હા આ મારા વાળા એવા આવે, આ મારા વાળા ને આ મારા વાળા નહી. આટલી પામર દશા થઈ ગઈ છે જૈન ના વાડામાં. આ કંગાળ, આ ધર્મ દારિદ્ર્ય છે. ધર્મ અંગેનું આ દરિદ્રતા છે, બહુ મોટી દરિદ્રતા છે. જે ધર્મ સિંહ વૃત્તિ એ થાય છે, નિરાલંબ નિરપેક્ષ જે દ્રવ્ય છે ને, જેના પરિણમનમાં, ધર્મના પરિણમનમાં પણ નિરપેક્ષતા છે. નિરપેક્ષ પરિણમન છે ધર્મ, અપેક્ષિત પરિણમન નથી. ત્યાં આવી બધી સ્થિતિ, એ પરિસ્થિતિની દરિદ્રતાને જાહેર કરે છે, કંગાળતા છે. કે રાગ છૂટી જાય ત્યારે એને છૂટવાનો આરોપ પણ એટલા માટે છે કે પહેલા એને હિંમત વકરી હતી. જો રાગ ન છૂટે તો બાહ્ય
પ્રતિ સમય નિર્જરા શુદ્ધિ કી વૃદ્ધિ ઓર ગુણ કા વિકાસ હોઈ રહા હૈ. ઇસ હાલત મે ભી વો અપને અલ્પકાલીન પર્યાયો કા, શુદ્ધ પર્યાયો કા જબ મૂલ્ય નહીં આંકતે તો કષાય કી મંદતા, જો અશુદ્ધ પર્યાય હૈ ઉસકા મૂલ્ય આંકને કા, કિંમત કરને કા તો સવાલ હી નહીં રહેતા હૈ. મને એક વચન સે યે સિદ્ધાંત સાફ હોતા હૈ कि जबकि ये शुद्ध पर्याय का भी मूल्य नहीं, कीमत नहीं करना है, तो फिर अशुद्ध पर्याय का तो करने का सवाल ही कहाँ रहता है? की बात ही नहीं है. मैंने पर्याय तो सहज देख लेने की चीज है, जैसे वो सरान पर छुरी को धार निकालते हैं तो सहज स्पर्श करते ही उसकी धार को देख लेते हैं. ज्यादा जोर लगावे तो પરીક્ષા કરને કી યથાર્થ પદ્ધતિ નહીં હૈ, તો કટ જાયગી ઉંગલી. જોર દેના હૈ તો સરાણ પર દેના હૈ, ઓર દેખ લેના હૈ તો સહેજ સ્પર્શ સે દેખ લેના હૈ, બસ ઉતના હી કામ હૈ. જ્ઞાન કા પર્યાય કે વિષય મેં દેખને કા કોઈ કાર્ય હૈ તો ઉતના હી હૈ. ઓર વો તો જ્ઞાન કા સ્વભાવ, ચિકિત્સા, ચિકિત્સા એ જ્ઞાન કા સ્વભાવ હોને સે સહેજ ચિકિત્સક વૃત્તિ હી હૈ જ્ઞાન કી, તો દેખ લેગા હી. કોઈ ઉસ પર ગૌર કરને કા યા જ્યાદા લક્ષ્ય દેને કી જરૂરત નહીં, વો તો સહેજ રૂપ સે જ્ઞાન દેખ લેગા. ઉસકા તો સ્વભાવ હી ચિકિત્સા કરને કા હૈ, તો વો તો પર્યાય કી ચિકિત્સા કરી લેગા. જો જ્ઞાન સ્વભાવ કી ગહેરાઈ મેં જાતા હૈ, એ પ્રગટ પર્યાય કો તો સહેજ હી રૂપ સે દેખ લેતા હૈ. यहाँ पर ये बात है कि प्रयोजन भूत चिंतन विशेष करना, दोनों में प्रयोजन भूत बात की सामान्यता है, सामान्य बात है. प्रवृत्ति की विविधता है, प्रयोजन की विविधता दोनों में नहीं है. अपनी परिणति को लाभ हो वह करना चाहिए, अपनी परिणति को लाभ हो वह करना चाहिए. अपनी चैतन्य परिणति को, परिणति आत्मा को पहचाने. देखो पहली बात पहचानने की है, निर्णय करने की है, पहचान करने की है. तो अपनी चैतन्य परिणति, अपने चैतन्य स्वरूप को, आत्मा को, मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने यही ध्येय मैंने लक्ष्य होना चाहिए, चाहे प्रवृत्ति शास्त्र पढ़ने की हो या प्रवृत्ति स्वरूप चिंतन की हो, तत्व चिंतन की हो, लेकिन अपनी परिणति अपने स्वरूप को पहचाने यही प्रारंभिक कार्य है। पहले से यही कार्य है कि हमको पहचान करना है। जहाँ तक पहचान नहीं हो जाए वहाँ तक पहचान कैसे हुए, बस यही दृष्टिकोण से यही बात लक्ष्य में रख करके, यही प्रयोजन लक्ष्य में रख करके प्रवृत्ति करना है, ये सीधी सादी बात है। मूल स्वरूप को पहचानना, मूल स्वरूप को जानना, यही बात है। तीन चार सौ बीस मिल मुझे आत्मा को पहचानना है, इस प्रकार लक्ष्य बारंबार, इस प्रकार का लक्ष्य बारंबार आत्मा की ओर मुड़ता है, लक्ष्य मुड़ता है कि मुझे तो मेरे स्वरूप की पहचान करना है। तो ये दृष्टांत लेते हैं कि घर में हीरे की कोई छोटी चीज होती है तो ये वो नाक की चुनी पहनते हैं ना बहने, खो जाती है कभी कभी, कोई अंगूठी भी खो जाती है, कभी कोई हीरा का हार हो वो भी खो जाता है। तो जब ये कीमती चीज घर में ही भले जिसका पता नहीं लगता, वो बाहर तो निकाली नहीं गए नहीं, घर में ही पहले थी कुछ आधा घंटा पहले देखी हो और बाद में नहीं मिलती हो, कहीं जगह रख दी हो या गिर गई हो, तो उसको खोजने के लिए जीव कितना बेचैन हो जाता है। समझो कोई रात को 9 बजे तो देखी है चीज को और आधा घंटा घंटा के बाद नहीं मिल रही है, तो कोई ऐसा विचार करता है कि अब तो सोने का समय हो गया, अब सो जाएं, फिर सुबह इसको ढूंढेंगे अच्छी तरह, ऐसा कोई विचार करता है क्या? क्या क्या करें, नींद आ जाएगी, नींद आ रही है, आती है नींद ही नहीं आती है कि कहाँ गई है, घर में खो गई है तो भी वो जहां तक उसका पता नहीं चले वहां तक उसको चैन नहीं होता। तो ये तो एक स्टोन है, इसको तो अंग्रेजी में तो यही कहते हैं, ये हीरा तो अपने गुजराती हिंदी में प्रसिद्ध नाम है, अंग्रेजी में तो वैसे भी उनको व्हाइट स्टोन कहते हैं, तो माणिक वगैरह होते हैं उनको कलर स्टोन कहते हैं, लेकिन कहते हैं उसको स्टोन, स्टोन मैंने पत्थर, पत्थर के पीछे भी नींद चली जाती है। तो ये चैतन्य हीरा है वो खो दिया है तो उसको ढूंढने के लिए नींद हराम हो जाए, इतने बेचैन हो जाए, ऐसा नहीं बने और मिल जाए ये भी संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगा, कि हम बुद्धि को लगाते रहें, बुद्धि शक्ति को तीव्र करते रहें और हमें कुछ मिल जाए, ऐसी बात ये नहीं है। ये तो खोजने की चीज है और उसकी खोज के पीछे लग जाते हैं तभी वो मिलते हैं, मिलता है। किसी 3 इंच को सम्यक दर्शन होता है तो उसको तो बहुत बुद्धि कम है, उघाड़ बहुत कम है उसको, संस्कार भले ही लिया हो लेकिन वो तो कोई याद नहीं है कि मैंने पूर्व हो में संस्कार लिया है, लेकिन वो संस्कार के वश उसे ऐसा होता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, आत्मा में से शांति चाहिए, शांति का उसको खोज रहता है। तो वो भी खोज में चलता है तो उसको ज्ञान से ही ज्ञान स्वभाव का पता चल जाता है। एक 3 इंच को ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव का पता चल जाता है, पहचान आ जाती है, भाव वासन हो जाता है। अनंत ज्ञान और अनंत सुख की खान ही मैं हूं, मैं इसकी खानी हूं,
ऐसा पता उसको चल जाता है, एक लक्षण से अंश से ही अंश का पता चलता है। तो मनुष्य को कितना आसान है ये अच्छी तरह समझ में आ सके ऐसी बात है। तिरेंद्र को कितना कम उगाड़ होता है, रास्ते पे वो खड़ा रहता है इतने ट्रैफिक को, तो उसको ये पता नहीं चलता है कि लग जाएगा मुझे, वो कोई उसको धक्का देता है उसको निकालता है तो वो हटता है, वरना हटता नहीं है। इतना कम उगाड़ है कि कहाँ मुझे नुकसान है कहाँ लाभ है, इसका बहुत कम विचार है। संगी है विचार करने की शक्ति होने के बावजूद भी वो उतना कम विचार कर सकते हैं। ऐसी कम विचार वाली परिस्थिति की पर्याय है वो तिर्यंश पर्याय, उसमें भी वो स्वरूप निश्चय करके स्वरूपानुभव करके पंचम गुण स्थान पर चला जाता है, आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर स्वरूप निश्चय करने में सालों के सालों लगे हैं। कितने साल से शास्त्राभ्यास करते हैं, कोई बोले कि 5 साल हुआ, कोई 10, कोई 15, कोई 25। स्वरूप निश्चय नहीं होता है। यही कारण है कि अपना प्रयोजन भूत विषय पर हमने कभी केंद्र लक्ष्य को केंद्रित नहीं किया, यही कारण है इसका। वरना ये बात इतनी कठिन नहीं है, इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि ज्ञान उपयोग मौजूद है, प्रकट है, प्रसिद्ध है, साकार है, मैंने उसका स्वरूप निश्चित कर सके ऐसे साकार है, और ये स्वयं के अनुभव गोचर है, कोई दूर चीज नहीं है, स्वयं के अनुभव गोचर है। और पहचान हुई तो आगे का सम्यक दर्शन तक का रास्ता बहुत साफ है, फिर इतना अवरोध नहीं है जितना अवरोध अवरोधक भाव और जितनी कठिनाई इसके पहले दिखाई देती है कि क्या करें, हम करें भी क्या, हमको कुछ ज्ञान नहीं है, हमको आत्मज्ञान हुआ नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मिथ्या दृष्टि है, कुछ समझ में नहीं आता, ये कठिनाई मालूम होती है। ये तो वहां तक है कि पहचान नहीं किया, वहां तक पहचान होने से आगे का रास्ता बहुत साफ है कि इतना स्वरूप की पहचान से इतना स्वरूप प्रति के महिमा अंदर से उमड़ पड़ता है कि स्वानुभव तक बहुत अल्प काल में जीव पहुंच जाता है। और कठिनाई पहचान तक है, तो पहचान तक कठिनाई वहां तक है कि जब इस दिशा में प्रयत्न करने के लिए कटिबद्ध नहीं होता है वहां तक ये तकलीफ है, दूसरी कोई बात नहीं है। फिर चले में कि आगे कोई आगे बढ़ने में स्वरूप की पहचान के बाद आगे बढ़ने में तो कोई इतनी तकलीफ है ही नहीं, ये तो एक ऑटोमेटिक मशीन जैसे चालू होती है और इसका प्रोडक्शन बार आता है, वैसे ही स्वरूप की महिमा रोकी नहीं जा सकती। पहचान स्वरूप के होने से स्वरूप की महिमा रोकी नहीं जा सकती, ऐसा ऑटोमेटिक परिणाम चालू हो जाता है, तो इसके फलस्वरूप सम्यक दर्शन बहुत अल्पकाल में आ ही जाता है, हो ही जाता है। विचार ही नहीं करना पड़ता है कि मैं स्वानुभूति करूं, बस मैं तो स्वानुभूति स्वरूप ही हूं, संवेदन ही मेरा स्वभाव है, करना पड़ने की बात तो सहज होने वाली चीज है, कोई उपाधि करने की चीज नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसके पहले जो कठिनाई है वो कठिनाई रूप दिखती है, महसूस होती है कि क्या करें, हम अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, कोई रास्ता ही नहीं सूझता, कोई रास्ता ही नहीं मिलता, बातें अच्छी लगती हैं, सुनते हैं तो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन काम कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके लिए कहते हैं कि स्वरूप की पहचान की दिशा में प्रयत्न करो, जो भी प्रयास करो ज्ञान के सूक्ष्म शक्ति को जो पर्याय में व्यक्त रूप है, और वीर्य की सूक्ष्म शक्ति को जो पर्याय में व्यक्त है, दोनों को एक ही
दिशा में एक ही जगह पे लगाओ, इस खोज में पहचान होना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इतनी कठिन बात नहीं है, ये बात साफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्ग सुगम है, सरल है, सर्वत्र ऐसा है, सदा सर्वत्र मार्ग सरल ही है और मार्ग सुगम ही है। ये बात इस दृष्टिकोण से कहने में आई है कि जिस दृष्टिकोण से पहचान के विषय में कटिबद्ध होने वाले को पहचान आसानी से होती है और पहचान होने से अनुभव आसानी से होता है, लेकिन वो रास्ता ही दूसरा पकड़े और कहें कि क्या करें, ये तो बहुत दुर्घट कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, दुर्लभ कार्य है, अनंत काल में नहीं हुआ है, ऐसा है ऐसा है ऐसा करके भारीपना उसका रखले में और दूसरी प्रवृत्ति में लगे, सही प्रवृत्ति में लगे नहीं, या अपनी शक्ति को सही प्रवृत्ति में सही दिशा में लगावे नहीं, तो फिर तो मुश्किल ही मुश्किल ही है।
बात
ख्याल में लेने की बात है, यहाँ प्रयोजन का विषय लिया, प्रयोजन भूत दोनों में ये बात लिया है कि जहाँ अपना निर्णय दृढ़ होता हो, दोनों जगह निर्णय शब्द लिया है, शास्त्राभ्यास से अपने को निर्णय दृढ़ होता हो या स्वरूप चिंतन से निर्णय में दृढ़ता होती हो, जैसे भी अपने चैतन्य परिणति आत्मा को मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने, यही ध्येय मैंने, ध्येय शब्द यहाँ लक्ष्य रूप में है, यही लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य से हमारी प्रवृत्ति हो ज्ञान के क्षोभम की और विधि के पुरुषार्थ के क्षोभम की, दोनों प्रकार के जो शक्ति है संगी पंचेंद्र जीव को सम्यक दर्शन और अनुभव प्राप्त करने में, ये दो शक्ति काम करती है भूमिका में, प्रथम भूमिका में ज्ञान के क्षोभम की और विधि के क्षोभम की। ज्ञान और पुरुषार्थ ये दोनों को अगर निर्णय की दिशा में ही लगावे तो निर्णय आसान है। क्यों आसान है? कि जो ज्ञान का उपयोग है ये व्यक्त है, प्रकट है, अनुभव गोचर है, साकार है, स्वभावंश इसमें प्रकट है, मैंने नजर आवे ऐसा प्रकट है, लेकिन अपने को लक्ष्य होना चाहिए कि हमें स्वरूप का ज्ञान स्वभाव का हमें निश्चय करना है। तो स्वभाव को ढूंढे, स्वभाव को खोजे, उसी दृष्टि से उनको अवलोकन में लें, उसको देखते रहें, तो सहज मात्र में उसका निश्चय हो सकता है। जो त्रियंज को होता है मनुष्य को नहीं होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। उस ध्येय के सिद्धि के हेतु मैंने इस कार्य की प्राप्ति, मैंने पहचान होवे, पहचान की सिद्धि के हेतु ध्येय मैंने पहचाने, यही ध्येय, तो उस ध्येय मैंने पहचान की सिद्धि, पहचान हो जाए, भाव वासन हो जाए, निर्णय हो जाए स्वरूप का, इसके कारण प्रत्येक मुमुक्षु को ऐसा ही करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। देखिए आपका ये जो बोल है, विषय बहुत साफ है, यहाँ इतना मार्गदर्शन है कि क्या करना और क्या नहीं करना, कि ऐसा ही करना और कुछ नहीं करना, बस ऐसा ही करना चाहिए। प्रत्येक की सिद्धि के हेतु प्रत्येक मुमुक्षु को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं हो सकता। ऐसा मैंने तुम शास्त्र ही पढ़ो, तुम चिंतन ही करो, ऐसा नहीं है। प्रयोजनभूत ही निर्णय के विषय में प्रयोजनभूत ही ऐसा ही करो, बस, चाहे शास्त्र अध्ययन से माध्यम से करो, चाहे चिंतन के माध्यम से करो, कोई भी बात हो, लेकिन स्वरूप निश्चय हो, ऐसा ही करना चाहिए, दूसरा कुछ करना
પૂછવી ચાહીએ
કે હું શું કહું, જો તત્વજ્ઞાન કી પ્રવૃત્તિ મેં જો લોગ આયે હૈ ઉનકે લિયે બહોત સુંદર માર્ગદર્શન હૈ.
યે બાત મેં તો ગુરુજી ને બતાયા હૂં, હું જો પ્રેમ કી બાત હૈ તો હમને પહેલે નહીં. અભી યે એક આદમી તો ગુરુજી ને
બતાયા, મૂળ બાત પ્રસિદ્ધ નહીં થી, પ્રસિદ્ધ નહીં થી, થી તો યહીં થી, યહીં સે લી ગુરુદેવ ને, ગુરુદેવ ને તો ના થી વહાં સે લી. મેં દિગંબર સંપ્રદાય મેં તો બાત હૈ, સાહિત્ય મેં હૈ બાત, ઓર જગે ઉસ ઓર સાહિત્ય મેં નહીં હૈ. ગુરુદેવ ઇસ સંપ્રદાય મેં નહીં થે તો ફિર યહાં સે લી, પ્રસિદ્ધ કી, યહાં સે લી ઓર પ્રસિદ્ધ કી. પ્રસિદ્ધ નહીં થી સંપ્રદાય મેં યે બાત જરૂર હૈ, પ્રસિદ્ધ કર દી બાત કો, સ્પષ્ટ કર દી, ખુલ્લી કર દી. જો ભી જિસકે ભી હોનહાર અચ્છે હો ઓર જિસકો ભી અપને આત્મા કા હિત કરને કી દરકાર હો ઉસકે લિયે તો બહોત અમૂલ્ય ચીજ હૈ, જિસકા મૂલ્ય હી નહીં કર સકતે, એસી ચીજ હૈ. ઓર ફિર દરકાર નહીં હો તો ઉસકા કોઈ ઇલાજ ભી નહીં હૈ, ચાહે એક બાર સુને ચાહે હજાર બાર સુને, ઇસકા કોઈ અર્થ નહીં હૈ, નિરર્થક હૈ. ऐसी बात है, संतों ने मार्ग सरल किया है कि सरलता की श्रेणी में जो कुछ जो जीव आता है उसको ये सरल कर देने वाले जो संत हैं उसके प्रति बहुत बहुमान आता है, बहुत बहुमान आता है. मुमुक्षु तो उपकार माने हैं, ज्ञानी भी इस बात को बार बार दोहराते हैं, जैसे दीपचंद जी ने बार बार लिया है इस बात को. लेकिन इस स्वरूप की जिसको बहुत मस्ती है, ऐसे भगवान पद्म प्रमलधारी देव नियम सार के टीकाकार हैं, बहुत मस्ती वाले हैं नियम सार के, जो क्षायिक पर्याय पर द्रव्यम प्रभावम हेयम इति कहने वाले हैं जो है टीका में. वो भी कलश में ये बात करते हैं, जहाँ निश्चय प्रत्याख्यान का प्रकरण चला है, तो कहते हैं कि श्री गुरु के चरणों से, श्री गुरु के चरण में हमारा लक्ष्य जाता है. चारित्र में आए हुए हैं, इतनी स्थिरता में है, इतनी भावना में है, तो भी वहाँ गुरु को याद करते हैं. ये बात बीच में आती है, इसका यही बहुत वास्तविकता है इस विषय की, बहुत वास्तविकता है. निश्चय प्रत्याख्यान में स्थिरता को ही निश्चय प्रत्याख्यान कहते हैं. याद नहीं रहा नंबर दिखाया था, टीका है, मूल टीका में परमार्थ प्रतिक्रमण निश्चित प्रतिक्रमण का अधिकार प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण की बात चलिए आखिर की गाथा है निश्चय प्रतिक्रमण के और स्वरूप स्थिरता को ही निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। समस्त आगम के सारा सार को विचार करने में बहुत सुंदर चातुर्य और गुण समूह के धारक निर्यापक आचार्यों ने जिस प्रमाण से द्रव्य सूत्र प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण को अति विस्तार से विवरण किए हैं उसको उसी प्रकार के जान करके जीन नीति को नहीं उल्लंघन करते हुए जो सुंदर चारित्र मूर्ति महामुनि महामुनि की बात कह लेते हैं खुद ही सुंदर चारित्र मूर्ति महामुनि है सकल संयम की भावना करता है पूर्ण संयम की वो भावना करता है। मैंने अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थिर ही रह जाना है बाहर निकलना ही नहीं है स्वरूप में से ऐसे महामुनि को बाह्य प्रपंच से विमुखता है पंचेंद्रिय के फैलाव रहित इसका उपयोग देह में जाता ही नहीं पंचेंद्रिय में इसका उपयोग फैलाता ही नहीं फैलाव रहित देह मात्र ऐसा खाली खोखा देह का है जिसको बगल में और परम गुरु के चरणों के स्मरण में आसक्त जिसका चित्त है ये सब डाला है। देखिए परम संयम की भावना के साथ श्री गुरु को लगा दिया इधर और परम गुरुओं के चरणों के स्मरण में आसक्त जिसका चित्त है उसी को उस महामुनि को उसी काल में यथार्थतया प्रतिक्रमण है प्रतिक्रमण में वो बात डाली है। मैंने कहा कहा श्री गुरु को स्मरण करते हैं इसके चरण की भक्ति भक्ति का बहुत सुंदर दृष्टांत है। यहाँ तक
परम प्रभाव की